दिन भर 30 अगस्त शुक्रवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। कश्मीर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पूरे पाकिस्तान में आज रैलियां निकाली गईं।
ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की नहीं होगी, ये फिर जंग होगी तो ये पूरी दुनिया की जंग होगी।
भारत प्रशासित कश्मीर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। जीडीपी के आंकड़ों ने दिया मोदी सरकार को झटका। मोदी सरकार ने कहा कई सरकारी बैंकों का विलय होगा।
दुनिया के सबसे बड़े 100 बैंक ले लेंगे, उसमें सिर्फ एक बैंक इंडिया का है। हमारे ऐसे भी कुछ बैंक होना चाहिए जो बहुत बड़े हैं।
और विवेचना में चर्चा ब्रिटेन की दिवंगत राजकुमारी डायना स्पेंसर की।
सबसे ज्यादा तो उनकी मुस्कान, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनकी आत्मीयता।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। पाकिस्तान में आज कश्मीर आर के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए। प्रधानमंत्री इमरान खान के इस आह्वान का मकसद ये संदेश देना था कि पाकिस्तान भारत के कश्मीरियों के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद से ही पाकिस्तान ये बयान देता आ रहा है कि वो कश्मीरियों की आवाज़ को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेकर जाएगा। प्रदर्शन का मुख्य केंद्र इस्लामाबाद रहा, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों को संबोधित भी किया। वहीं भारत प्रशासित कश्मीर में आज जुमे की नमाज तो हुई, लेकिन कई बड़ी मस्जिदें आज भी नहीं खुली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ कई बैंकों के विलय की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही सार्वजनिक बैंकों की संख्या घटकर 12 हो जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंकों के लिए 55,250 करोड़ के बेल आउट पैकेज की भी घोषणा की। सीबीआई की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की रिमांड 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चिदंबरम को मंगलवार तक के लिए राहत दी है। ये मामला प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने दायर किया है, जो उन्हें अलग से गिरफ्तार करना चाहती है। हांगकांग पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कोई भी शनिवार को होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेगा, उसे 5 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस ने इस प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे 3 महीने से हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों का साथ ना दें। इन रैलियों के आयोजकों का कहना है कि अब ये प्रदर्शन और अधिक नहीं होंगे, लेकिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार हुए इन लोगों में एक स्थानीय पार्षद चेंग चुंग तई भी शामिल हैं। एक अन्य स्थानीय पार्षद फर्नांडो चेउंग ने इन गिरफ्तारियों को डरावना बताया है। इन गिरफ्तारियों, इन दमनकारी नीतियों के बावजूद मूवमेंट और मजबूत होता जा रहा है। लोगों में इन बातों को लेकर अब कोई डर नहीं रह गया। उन्हें ये समझ आ रहा है कि ये हांगकांग के लिए अंतिम लड़ाई हो सकती है। यदि हम समझौता करते हैं तो हम अपनी बुनियादी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता करेंगे। फर्नांडो चेउंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्कॉटलैंड के एक न्यायाधीश ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के संसद को निलंबित करने की योजना पर अस्थायी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विभिन्न पार्टियों के 75 सांसदों ने कोर्ट के सामने ये पेशकश की थी। हालांकि इस केस की सुनवाई अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। संसद को निलंबित किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के फैसले को चुनौती मिली है। लॉर्ड डोहर्ट ने सत्र न्यायालय में फैसला सुनाते हुए कहा, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि इसके लिए अंतरिम निलंबन या अंतरिम निर्णय की आवश्यकता है। लॉर्ड डोहर्ट के शब्द। पंजाब के पाकिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री ने एक सिख युवती के मुस्लिम परिवार द्वारा अगवा किए जाने और फिर जबरन इस्लाम कबूल कराने और शादी कराने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। आरोप लगाने वाली लड़की के परिवार का दावा है कि वो नाबालिग है। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे और लड़की घर छोड़कर भागने के फैसले से सहमत भी थी। सीरिया से मिली रिपोर्टों के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिम इलाके के मारत अल नुमान शहर से आम लोग भाग रहे हैं। यहां सीरिया की सरकार और उसके सहयोगी रूस की ओर से हवाई हमले जारी हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक करीब 7,000 आम लोग यहां से जा चुके हैं। ये शहर एक अहम हाईवे के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यहां इस हफ्ते 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सरकारी सेनाएं इदलिब प्रांत में होते हुए उत्तर की तरफ बढ़ रही हैं। यहां विद्रोहियों का सबसे ताकतवर एक ऐसा गुट है जिसे कभी अलकायदा से जोड़कर देखा जाता था। श्रीलंका के एक कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो ईस्टर के दिन धमाके करने वाले एक आत्मघाती हमलावर के अवशेष कब्र से निकाले और उन्हें किसी दूसरी जगह दफनाए। अभी ये बट्टीकलो में हिंदुओं के एक श्मशान घाट में दफन है। इस हमलावर ने अप्रैल में इसी शहर में एक चर्च में करीब 30 लोगों को निशाना बनाया था। पास में ही हमलावर का गृहनगर भी है, जहां के मुसलमानों ने उन्हें कब्रगाह में जगह देने से मना कर दिया था। इस हफ्ते हमलावर को दफन करने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था और पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। पुलिस का कहना है कि जब तक दफन करने के लिए सही जगह नहीं मिलती, हमलावर के अवशेष मुर्दा घर में ही रहेंगे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक पूरे एक घंटे का प्रसारण। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज राजधानी इस्लामाबाद में जनता से खिताब करते हुए आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फौज एकदम तैयार है और जरूरत पड़ने पर भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। या हमारी फौज तैयार है, हमारी फौज तैयार है कि किसी किस्म का आजाद कश्मीर पे इन्होंने कुछ भी किया तो हम इनके लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये भाषण उस आयोजन का हिस्सा था जिसे भारत प्रशासित कश्मीरियों के प्रति पाकिस्तान की एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित किया गया था। वहीं मौजूद थी बीबीसी संवाददाता शुमायला जाफरी। सुनिए उनकी आंखों देखी।
मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं, जहां अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कश्मीर सॉलिडेरिटी रैली को एड्रेस किया है। इस रैली की अनाउंसमेंट उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक स्पीच में की थी और उन्होंने ये कहा था कि सितंबर के एंड तक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अगले सेशन तक पाकिस्तान हर हफ्ते कश्मीर आवर ऑब्जर्व करेगा। दिन 12 बजे के करीब पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक को रोक दिया गया, सायरन बजाए गए, पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले किया गया। यहाँ पर बहुत सैकड़ों लोग जो हैं वो जमा हुए और पूरे पाकिस्तान में इस तरह की और जो हैं वो रैलीज आज जो हैं वो निकाली गई हैं।
हम ये चाहते हैं कि हमारा कश्मीर जो है वो आज़ाद हो और उसको आज़ादी के साथ रहने का हक दिया जाए। ये जुल्म है, हम किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते। जिस तरह से वो रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाए, ठीक है, और जंग के बगैर रहने दिया जाए। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की नहीं होगी, ये फिर जंग होगी तो ये पूरी दुनिया की जंग होगी।
आज आप देखें 23 दिन हो गए, आप एक वक्त का खाना छोड़ के आप देखें आपका कितना बुरा हाल होता है। जिनके माँ बाप के पास खुद खाने को नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, ना बेचारे घर से बाहर निकल सकते। आप अपने ऊपर इस चीज़ को एक दफ़ा तारी करके देखें, आपको एहसास होगा इस बात का कि ये किस कदर तकलीफ दह मरहला है।
यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बताता है कि जो भी होगा वो इंडिया जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर रहते हैं इनको सेल्फ राइट ऑफ डिटर्मिनेशन के थ्रू राइट दिया जाएगा। उन्होंने यूनिलैटरल स्टेप उठाया जिसकी वजह से पूरे अब रीजन के अंदर इंडिया के इस यूनिलैटरल स्टेप की वजह से एक बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये उन्होंने बिल्कुल गलत इकदाम किया, वहाँ के लोगों के राइट्स को बिल्कुल उन्होंने सैबोटेज कर दिया।
सबसे बढ़कर जो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर, जो उनके मूवमेंट के लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनको उठाया जा रहा है और हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। यह सब कुछ वहाँ पे बंद होने चाहिए, कर्फ्यू उठाया जाना चाहिए।
जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है वहाँ फिल फूर जो है ना, वहाँ पर कर्फ्यू उठाया जाए और जो उन पर मजालम हो रहे हैं उनको रोके।
कश्मीर को अक़्वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्यूनिटी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, अगर अभी प्ले नहीं करेंगे तो ये जुल्म है।
इमरान खान के जो क्रिटिक्स हैं वो इस मूव को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि ये एक सुपरफिशियल मूव है जो कि पाकिस्तान की जो पहले ही परेशानियां हैं इकोनॉमिक उनमें इजाफा करेगी और इस तरह के जो जेस्टर्स हैं वो इंडिया को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि जो एक्शन उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी में लिया है वो उसको वापस लें।
भारत प्रशासित कश्मीर के मौजूदा हालात में वहां रहने वाले आम लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पूरे पाकिस्तान में आज जगह जगह रैलियां हुईं। जानकारी दे रही थी इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। दिन भर में अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की, जहां आज जुमे की नमाज के बाद संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ तमाम तरह की पाबंदियां देखने को मिली। कश्मीर घाटी की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। ज्यादा जानकारी श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की जुबानी।
इस समय दिन के 1:15 बज चुके हैं और हम दरगाह बर हजरत बल के इलाके में हैं। दरगाह जो काफ़ी मशहूर हैं और कश्मीर घाटी के कोने कोने से जुम्मा के दिन लोग यहाँ नमाज अदा करने आते हैं। पिछले जुम्मा भी यहाँ जो है स्थानीय लोगों को इस दरगाह के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी।
का नाम?
मेरा नाम जावेद अहमद है।
जावेद साहब, अभी आप कहाँ पे हैं?
मैं भी से आया ये हजरत बल में, मेरे को जाना है सर। मैं वहाँ से भी आया है, वहाँ नहीं छोड़ा इन्होंने, अब यहाँ से आया, इन्होंने बंद किया ये रास्ता भी है। बड़ा दिन है, जुमा है, सब
तो कहाँ जा रहे थे?
हजरत बल जाना है नमाज पढ़ने के लिए, तो नहीं दिया जाने के लिए, वापस किया, सड़क बंद है सब।
तो लेकिन इन्हें कुछ लोगों को पैदल जाने दे,
ये बोलता है पैदल जाओ, स्कूटर यहाँ रखो, फिर यहाँ से कितना जाएगा पैदल, तो वहाँ से घर जाना है, फिर वहाँ से यहाँ से रास्ता ही नहीं है।
आपका नाम जानना चाहेंगे?
मेरा नाम है
महोदय यूसुफ साहब। कहाँ नमाज पढ़ी आज आपने?
ब्रेन में पढ़ा नमाज,
यहाँ लोकल मस्जिद।
जी जी जी।
तो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे?
हम इस पहले दरगाह पढ़ते थे, दरगाह हजरत बल।
अच्छा,
वहाँ छोड़ा नहीं हमको, वहाँ पर कर्फ्यू था इसलिए हमको छोड़ा नहीं, वहाँ से पूरा बनिश है, सब जगह बनिश है, यहाँ पर कर्फ्यू लगाया, जैमे मस्जिद कर्फ्यू कर दिया, बंद कर दिया, नाइट डाउन डाउन सब जगह बंद कर दिया है।
तो आप जा नहीं पाए हैं?
नहीं नहीं, हम नहीं पहुँचा पाए।
तो हमारे साथ एक भाई साहब और यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका नाम?
मुश्ताक।
मुश्ताक साहब, ये बताइए कि आज जुम्मा की नमाज कहाँ पढ़ी है आपने? कहाँ?
यहाँ ब्रेन मस्जिद में पढ़ी।
तो कहाँ पढ़ते थे आप इससे पहले?
हम दरगाह में पढ़ते थे।
अच्छा,
वहाँ सब कर्फ्यू में?
अच्छा,
यहाँ भी कर्फ्यू लगाए, देखिए आप, मिलिट्री सब जगह है, जुल्म में फंसे हम यहाँ पे,
हम कहीं नहीं जा सकते,
खाना पीना कुछ नहीं है यहाँ पे, सब बर्बादी चल रही है। आज 25-26 दिन हो गए कर्फ्यू में, ये सब झूठ कह रहे हैं, यहाँ पे खाना पीना है, वहाँ पर कुछ नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है वहाँ से।
श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट। तनाव के ऐसे माहौल में सुरक्षा बलों के लिए भी काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जम्मू कश्मीर में आईजी सीआरपीएफ रविदीप शाही से माजिद जहांगीर ने बात की और उनसे जानना चाहा कि तनाव के मौजूदा हालात में वो अपनी टुकड़ी का ख्याल किस तरह रखते हैं।
अभी 25-26 दिन हुए हैं, बहुत ही उन्होंने प्रोफेशनली हैंडल किया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और ये इंश्योर किया कि कोई कैजुअल्टी ना हो। कई दफ़ा काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम काफ़ी स्ट्रेसफुल होती थी, काफ़ी स्टोन पेल्टिंग अलग अलग जगह में होती थी, लेकिन हमारे जो ग्राउंड के ऊपर ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उन्होंने बहुत ही संयम से काम किया है। और नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि आप ठीक कह रहे हैं, कई दफ़ा स्ट्रेस भी आ जाता है, लेकिन उसको भी हम बार बार, हमारे जो ऑफिसर हैं ग्राउंड लेवल में, हम सब उनके साथ रहते हैं, बात करते रहते हैं। और कम्युनिकेशन की जो आपने बात किया, उसमें हर कंपनी में हमने एक सिम कार्ड दिया हुआ है, उस सिम कार्ड के थ्रू तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जवान की घर में बात हो जाती है। और हम ही नहीं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड में रहते हैं डाउनटाउन एरिया में भी, वो सिविलियन की भी बात करवाते हैं।
तो क्या ऐसे भी आपके जवानों को आदेश मिलते हैं कि, जाहिर सी बात है कि लोगों से डील करनी है, आम लोगों से, जो एक एग्रेशन का कश्मीर में हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेज का रहता था, क्या इस बार ऐसे आदेश मिले हैं कि लोगों को एग्रेशन ना दिखाया जाए?
नहीं, देखिए, हमारा हमेशा सीआरपीएफ में प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमने ध्यान दिया है और उसमें हमेशा हमने अपने जवानों को ब्रीफ करते हैं। हमारी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि सीआरपी के द्वारा इशू किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया, उसके हिसाब से हम हमेशा रिस्ट्रेन, हमारा एक बज वर्ड रहता है कि रिस्ट्रेन रखना है, और रिस्ट्रेन और अफेक्टिवनेस का बैलेंस रखना है, ताकि हम रिस्ट्रेन भी कर सकें अपने आप को और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल भी कर सकें। और क्योंकि सीआरपीएफ काफ़ी देर से है, वो रोज़ ये चीज़ को डील करती है, तो उसको जो लॉ एंड ऑर्डर की अलग अलग फैसेट्स है वो जानते हैं, तो इसलिए वो अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं अभी तक।
अच्छा सर, मैं बहुत मिसालें तो नहीं दूंगा, एक दो जगह मैं खुद विटनेस हूँ इस बात का कि जब कर्फ्यू पासिस को सीआरपीएफ ने नहीं माना, जैसे अभी लास्ट फ्राइडे था तो यूएन का पूरा वो सील किया गया था, तो मैं वहाँ खड़ा था और एक आम नागरिक आ गया, उसका एक बीमार बच्चा उनकी गाड़ी में था, तो उन्होंने ही शोड कर्फ्यू पास टू सीआरपीएफ जवान, اور سی آر پی ایف جوان نے ریفیوز کیا کہ نہیں آپ یہ اپنے پاس رکھے اور یہاں سے جائیے، اور وہ بار بار انہیں بتا رہا تھا کہ بچے کو جی بی پر ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ تو ان حالات میں کیا آدیش ہیں آپ کے جوان؟
نہیں، ہمارے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ایمبولینس کو اور جو پیشنٹس جا رہے ہیں ہاسپٹل میں ان کو الاؤ کرنا ہے، اور یہ ہمارے جنرل انسٹرکشن ہیں۔ تو اس کے اور جہاں تک، کیونکہ میں بھی ابھی راؤنڈ لگا کے آیا ہوں، میں نے دیکھا کئی ایمبولینس کو الاؤ کر رہے تھے وہاں پہ، اگر کوئی اپنا ہاسپٹل جانے کی وجہ بتاتا ہے یا ایمبولینس، اس کو ہم الاؤ کرتے ہیں۔
اچھا سر، دوسرا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو سٹرس فری ماحول، اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ جب جوان واپس آتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کچھ سودائیں آپ نے رکھی ہیں جوانوں کے لیے؟
نہیں، ان کا ریکریشن کا ہم دھیان رکھتے ہیں پورا۔ ہمارے ریکریشن روم ہوتے ہیں ہر کمپنی لوکیشن میں، جس میں ٹی وی لگا رہتا ہے، اس کے علاوہ اسپورٹس کا بھی ویوستھا ہوتی ہے، ڈپینڈنگ آن دا اسپیس کتنی ہے ہماری۔
یہ تھے جموں کشمیر میں آئی جی سی آر پی ایف روی دیپ ساہی، ان سے بات کر رہے تھے ماجد جہانگیر۔ سمویدھانک سوائتتا ختم کرنے کے بھارت سرکار کے فیصلے کے بعد بھارت پرشاست کشمیر میں تعینات سرکشا بلوں پر عام لوگوں کی پٹائی اور پرتاڑنا کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں۔ کئی گاؤں والوں نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں ڈنڈوں سے پیٹا گیا اور بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے۔ بھارتی سینا نے ان آروپوں کو آدھارہین اور اپرمانت بتایا ہے۔ اس بارے میں بی بی سی نے اتری کمان کے پورو کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل دیپندر سنگھ ہڈا سے بات کی، تو انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔
اگر یہ الیگیشن صحیح ہے تو یہ غلط بات ہے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ پوری انڈین آرمی وہاں پر سیویلینز کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کر رہی ہے، برتاؤ کر رہی ہے، کیونکہ جو انڈین آرمی کی پالیسیز، پریکٹسز، ڈاکٹرن ہے، وہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو ایک اہم درجہ دیا جائے، اور یہی ہم نے کشمیر میں فالو کیا ہے۔ دیکھیے یار، یہ مجھے معلوم ہے ہر ایک کمپلینٹ، چاہے آفیشیل چینل سے آئے یا ان آفیشیل چینل سے آئے، ہر ایک کمپلینٹ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور صرف ہم نہیں کرتے، پولیس بھی ان کی انویسٹیگیشنز کرتی ہے۔ اینڈ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوا ہے تو اس میں پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے۔ There are hundreds of soldiers and officers جن کو human rights cases کے allegations میں punishment دی گئی ہے۔ So ہمارا record on tackling human rights بہت اچھا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری allegations آتی ہیں، 90% of them we have investigated and found کہ وہ غلط اور motivated allegations تھی۔ تو یہ بھی ایک fact دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
یہ تھے اتری کمان کے پورو کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل دیپندر سنگھ ہڈا۔
بی بی سی انڈیا بول۔
انوچھید 370 اور دھارا 35A کو ختم کیے جانے کے بعد بھارت پرشاست کشمیر میں سرکار کے شانتی کے دعووں کے بیچ جاری ہے تناؤ۔ موبائل انٹرنیٹ بند اور طرح طرح کی پابندیاں کب ہوں گی ختم، اور کیسے بحال ہوگی سامان استھتی، کیا ہوگا سرکار کا اگلا رخ؟ بی بی سی انڈیا بول میں چرچا ہوگی اسی وشے پر۔ آپ بھی رکھیں اپنی رائے ترکوں کے ساتھ۔ کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شنیوار 31 اگست شام 7:30 بجے مفت فون کریں 1811-7000 یا 1811-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
یہ بی بی سی ہندی سیوا ہے اور آپ سن رہے ہیں شام کی سبھا دن بھر سندیپ سونی کے ساتھ، ہفتے کے ساتوں دن شام 7:30 سے 8:30 بجے تک پورے ایک گھنٹے کا پرسارن۔ موجودہ وتیہ ورش کی پہلی تماہی میں مودی سرکار کو ارتھ ویوستھا کے مورچے پر تگڑا جھٹکا لگا ہے۔ کیندریہ سانکھیکی کاریالے کی اور سے آج جاری کیے گئے آنکڑے یہی بتا رہے ہیں۔ اس بارے میں اور جانکاری کے لیے میں نے بات کی بی بی سی سنواددتا نتن شریواستو سے۔
سندیپ، جو سرکار نے آنکڑے جاری کیے ہیں اس میں جو وکاس در ہے وہ 5% پر آ گئی ہے۔ اگر ہم پچھلے وتیہ ورش کی جو انتم تماہی تھی اس میں آرتھک وکاس در کو دیکھیں تو وہ قریب 5.8% پر تھی، یعنی 0.8% کی جو گراوٹ ہے، ایک تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم آنکڑوں پر دیکھیں، اور جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، اگر ہم آرتھک سینٹیمنٹ کی بات کریں، اکنامک سینٹیمنٹ کی، تو پچھلے 5 سال میں یہ سب سے زیادہ گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ جو اوور آل بھارتی ارتھ ویوستھا کا موڈ رہا ہے پچھلے 6 سے 8 مہینوں میں، اس میں یہ سوال بڑھتے رہے ہیں کہ کیا ارتھ ویوستھا پٹری پر ہے یا اس سے اترتی ہوئی دکھ رہی ہے۔
سرل شبدوں میں ہمارے شروتاؤں کو یہ بھی سمجھانا چاہیں گے کہ یہ جو 0.8% کی جو گراوٹ ہے بھارتی ارتھ ویوستھا میں، اس سے عام لوگوں کے جیون پر، ان کی جیب پر क्या कोई बड़ा असर पड़ सकता है, इसको इसे कैसे देखा जा रहा है?
जी देखिए, जीडीपी जो होता है, इसको कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है,
सकल घरेलू उत्पाद।
हाँ, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में एक आम आदमी जो है वो कितना खर्च कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। तो अगर जीडीपी में गिरावट आती है तो मतलब है कि हमारे और आपके जो पैसे, जो लिक्विड हमारे पास है, उसमें भी कमी आती है। यानी विकास तो कम होने के साथ साथ जो उपभोग की चीज़ें हैं, जो उपभोग का एक जो एक मानक है, उसमें गिरावट आती है। वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि बाज़ार में पैसा कम होता है और जो मांग है वो भी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो पिछले कुछ महीनों से ये आर्थिक सेंटिमेंट चल रहा है, उसकी एक मिसाल है जो ऑटो सेक्टर है भारत का। अगर ऑटो सेक्टर को देखें तो लगातार गिरावट आती जा रही है। यानी ना सिर्फ बड़ी हेवी व्हीकल्स या छोटी गाड़ियों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उससे जुड़ा ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो मजदूर काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, उनकी नौकरियां जा रही हैं।
मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को ये जो झटका लगा है, आज ये खबर आने से पहले आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि मोदी सरकार 10 सरकारी बैंकों का विलय कर रही है। पूरा ब्यौरा बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट में।
दोपहर बाद दिल्ली में किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 10 बैंकों के विलय का फैसला किया है और इसके तहत पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को साथ मिलाया जा रहा है। इसी प्लान के तहत सरकार केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को भी साथ मिलाने जा रही है। 3 अन्य बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक भी इस योजना का हिस्सा है। इस कड़ी में विलय किए जाने वाले बैंकों में इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक भी शामिल हैं, यानी इन दोनों को भी साथ मिलाया जाएगा। वित्त मंत्री ने इसकी वजह बताते हुए कहा,
बिग बैंक्स विद एनहांस्ड कैपेसिटी टू इंक्रीज क्रेडिट।
बड़े बैंक कर्ज मुहैया करवाने की क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे। बड़ी अर्थव्यवस्था को इस तरह के बैंकों की जरूरत होती है जो उसे ले जाने में इस तरह की क्षमता मुहैया करवा सकें। हम ऐसे बैंक चाहते हैं जिनका फैलाव पूरे मुल्क में हो और उनमें ये क्षमता हो कि वो वैश्विक कंपनियों के रूप में उभर सकें। बैंकों के विलय से उन्हें चलाने में आने वाले खर्च में कमी होगी, जिससे बैंकों के कर्ज के दर में भी कमी होने की संभावना है। ये थी भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री का कहना था कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना $5 खरब तक पहुंचाने की योजना के लिए तैयार रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था का दायरा $2.6 खरब सालाना है। वित्त मंत्री ने 23 अगस्त को भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कदमों की घोषणा की थी, जिसमें वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बजट में किए गए बदलाव को वापस ले लिया गया था। सरकार के आज के फैसले के बारे में बात करते हुए इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक टीके अरुण ने कहा,
दुनिया के सबसे बड़े 100 बैंक ले लेंगे, उसमें सिर्फ एक बैंक इंडिया का है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये स्थिति बदलना है तो हमारे ऐसे भी कुछ बैंक होना चाहिए जो बहुत बड़े हैं। अब देखिए, इंडियन कंपनी बाहर की कोई बड़ी कंपनी को टेक ओवर करते हैं, जैसे टाटा ने कोरस को ले लिया था या टाटा ने लैंडलो को ले लिए थे। उस तरह की मेगा मर्जर टेकओवर को फाइनेंस करने के काबिल इंडियन बैंक नहीं थे।
साथ ही सरकार की मंशा ये भी है कि कमजोर यानी वित्तीय तौर पर कमजोर बैंकों और एक मजबूत स्थिति वाली बैंक को विलय करने से मजबूत बैंक के पास जो फंड होगा वो बाजार में कर्ज के तौर पर दिया जा सकेगा। हालांकि टीके अरुण का ये भी कहना है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।
कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। इंडिया जैसे इतने बड़े देश में बैंकों की लेंडिंग ये GDP के एक से के नाते देखोगे तो सिर्फ 50 या 55% के बीच में है, जबकि पूरे दुनिया में ऐसे कोई मार्केट इकोनॉमी नहीं होगा जिसका बैंक क्रेडिट टू GDP रेशियो ये 100% से ज्यादा नहीं हो।
मोदी सरकार ने पिछले टर्म में विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किया था। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
बात भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की। असम का असल नागरिक कौन है कौन नहीं, ये तय करने वाला नेशनल सिटीजन रजिस्टर या NRC की अंतिम लिस्ट आखिरी सूची 31 अगस्त को जारी होने वाली है। इसमें किसका नाम होगा किसका नहीं होगा इसे लेकर असम की हवा में आजकल एक अलग तरह का तनाव है। बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे इस समय असम में हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे अब से कुछ देर पहले बात की।
जैसे कि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कल फाइनल लिस्ट के प्रकाशन के बाद राज्य में झड़पें हो सकती हैं, हिंसा हो सकती है। इस बात के मद्देनजर जो सुरक्षा इंतजाम है वो बहुत ही पुख्ता है। पूरे राज्य में जहां भी मैं ट्रैवल कर रही हूं, मैं हर जगह पुलिस पेट्रोल्स को और इनफैक्ट सीआरपीएफ की यूनिट्स को भी देख सकती हूं। असम पुलिस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए ये भी कहा है, लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, और खास तौर पर फेक न्यूज के बारे में कहा है कि व्हाट्सएप से जो सर्कुलेट होती है उस फेक न्यूज पे और र्यूमर्स पे, अफवाहों पे, उसके चक्कर में ना पड़े, उस पर ध्यान ना दें, इस बात की अपील करी उन्होंने। इसके साथ ही होम मिनिस्ट्री, जिसकी सीधी निगरानी में ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पर हो रहा है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि भाई अगर जिसका एनआरसी में कल नाम नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे सीधे तुरंत विदेशी नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इन सारी अपीलों के बावजूद जो एक शब्द में अगर मैं कहना चाहूँ कि यहाँ की हालत आज क्या है, तो वो होगी भ्रम की स्थिति। बहुत बेचैन है कि कल पता नहीं इसके बाद भी नाम आएगा या नहीं। ऐसी ही एक आवाज आप सुनिए कामरूप जिले से ही बादशाह मियाँ की, जिनके घर के सदस्य हैं, जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है, वो क्या कहते हैं।
पांच जन्म से नाम आया है नहीं क्या,
इनके छह लोग थे फैमिली में, उनका इनका नाम आया है, जो बुजुर्ग है उनका नाम आया है, लेकिन बाकी पांच जो लोग हैं उनका नाम नहीं आया है। तो इन्होंने क्लेम किया तो हेयरिंग वगैरह हो गया, तो अभी इनका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ये चिंता में है।
आप और भी लोगों से मिली होंगी, सुनने वालों को बताइए कि क्या देखा आपने, लोगों के चेहरे, दुकानें, बाजार, आवाजाही सब कुछ सामान्य है या कुछ फर्क महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि आप पहले भी असम जाती रही हैं?
एक तरह का खौफ, एक तरह की बेचैनी मैंने आज लोगों के चेहरों पर देखी। एनएस की सेवा केंद्र जो है उनके आसपास भी हल्की फुल्की भीड़ इकट्ठा थी, लोग आ जा रहे थे अपने, उनके हाथ में आधार कार्ड, उनके कागज भी थे, कुछ वेरिफिकेशन की छोटी मोटी प्रोसेस अभी भी जगहों पे चल रही है। लेकिन उसके साथ में एक जरूरी बात जो मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगी वो ये है कि जो भी अनाउंसमेंट्स गुवाहाटी में सरकार कर रही है एनआरसी के बारे में, वो लोगों तक ग्राउंड पर नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सरकार ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आएगा, उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने अपना केस पेश करके अपनी नागरिकता का दावा करने के लिए 120 दिन का समय दिया जाएगा। पहले ये समय सिर्फ 60 दिन का था, तो ये जो समय सीमा बढ़ाई गई है इसके बारे में ग्राउंड पर लोगों को जानकारी नहीं है।
प्रियंका, इस बारे में कुछ बताया गया है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी की सूची में नहीं आएगा उन्हें ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, लेकिन उस बीच उनको क्या हिरासत में लिया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, ये इसके बारे में कुछ आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है?
इसके बारे में ये जहाँ तक क्लैरिटी है वो ये है कि बिल्कुल भी, मतलब जब तक फॉरेन ट्रिब्यूनल किसी भी नागरिक को सुनवाई के बाद, उसको सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद, उसके कागज एग्जामिन करने के बाद, फॉरेन ट्रिब्यूनल जब तक उसे एक विदेशी नागरिक घोषित नहीं कर देती, तब तक किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थिति में किसी भी नागरिक को डिटेन नहीं किया जाएगा।
ये थी असम से बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे। और आइए अब एक नज़र सोशल मीडिया की आज की हलचल पर। मैंने बात की अपनी सहयोगी सिंधु वासनी से। आज गूगल पर और सोशल मीडिया पर इस्लामिक न्यू ईयर, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, ये क्या है?
दरअसल इस्लामिक न्यू ईयर की आज से, यानी इस्लामिक नए साल की आज से शुरुआत हो रही है, इसीलिए गूगल पर इसे काफ़ी सर्च किया जा रहा है। कई देशों में अलग अलग टाइम जोन की वजह से आज से ही शुरू हो गया है ये। भारत में कल शाम से शुरुआत होगी इस्लामिक न्यू ईयर की। और मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, मुहर्रम इसका पहला महीना है। और इस महीने के पहले दिन को शिया और मुस्लिम समुदाय के कुछ तबके मातम के तौर पर भी मनाते हैं। तो इस बारे में सर ढूंढ रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं और चर्चा भी हो रही है।
सिंधु, स्टूडियो में आने से पहले आप एक प्यारी बच्ची की तस्वीर का जिक्र कर रही थी, जिसे सोशल मीडिया पर बहुत बहुत शेयर किया जा रहा है, वो क्या है?
जैसे कि अभी मैं बीबीसी हिंदी के इंस्टाग्राम पे भी हमने बच्ची की वो तस्वीर पोस्ट की है, मैं देख रही हूँ। 11 महीने की जिक्रा नाम है बच्ची का, और जिक्रा अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई है। उसके दोनों पाँव में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और बगल में है उसकी गुड़िया गुलाबो, गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए, उसके भी दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। दरअसल ये बच्ची सारे काम गुड़िया के साथ ही करती है अपने, मतलब इसे खाना खाना है तो पहले गुड़िया को खाना खिलाना होगा। तो जब इसके पाँव में चोट आ गई, पैर टूट गया इसका, तो डॉक्टरों को पहले गुड़िया को प्लास्टर चढ़ाना पड़ा, तब जाके इसने प्लास्टर चढ़वाया। ये तस्वीर काफ़ी शेयर की जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। फेसबुक पर अनुराग अनंत लिखते हैं कि बच्चे खिलौने को फकत खिलौना नहीं समझते, आज की सबसे प्यारी तस्वीर। विनीत कुमार ने फेसबुक पर लिखा है कि ऐसे डॉक्टर को थैंक यू बोलिए, और बता दूं कि ये बच्ची दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती थी, तो डॉक्टर जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनकी भी बहुत तारीफ हो रही है।
सोशल मीडिया की आज की हलचल बता रही थी सिंधु वासनी। दिन भर की दौड़ भाग में अगर आपको वक्त नहीं मिलता ये जानने का कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, तो इसी तरह सुनते रहें दिन भर। ये बीबीसी हिंदी सेवा है, दिल्ली स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही देर में बजने वाले हैं रात के 8। बने रहें हमारे साथ, खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले सुनते हैं अभी तक के मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में आज कश्मीर आर के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए। प्रधानमंत्री इमरान खान के इस आह्वान का मकसद ये संदेश देना था कि पाकिस्तान भारत के कश्मीरियों के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद से ही पाकिस्तान ये बयान देता आ रहा है कि वो कश्मीरियों की आवाज़ को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेकर जाएगा। प्रदर्शन का मुख्य केंद्र इस्लामाबाद रहा, जहाँ प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों को संबोधित भी किया। वहीं भारत प्रशासित कश्मीर में आज जुमे की नमाज तो अदा हुई, लेकिन कई बड़ी मस्जिदें आज भी नहीं खुली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यमुक्त हो जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कार्य से मुक्त होने की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि अब श्री नृपेंद्र मिश्रा जी सेवा मुक्त होने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। वे अपनी इच्छा के अनुरूप सितंबर के दूसरे हफ्ते से कार्यमुक्त हो जाएंगे। आगे के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब के पाकिस्तानी प्रांत के मुख्यमंत्री ने एक सिख युवती के मुस्लिम परिवार द्वारा अगवा किए जाने और फिर जबरन इस्लाम कबूल कराने और शादी कराने के आरोपों की जाँच के आदेश दे दिए हैं। आरोप लगाने वाली लड़की के परिवार का दावा है कि वो नाबालिग हैं। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे और लड़की घर छोड़कर भागने के फैसले से सहमत थी। इस संबंध में अब आधिकारिक बयान भी आ गया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस मामले का जिक्र पाकिस्तान की सरकार से किया है और चिंता जाहिर की है, साथ ही त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। सीरिया से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिम इलाके के मारत अल नुमान शहर से आम लोग भाग रहे हैं। यहाँ सीरिया की सरकार और उसके सहयोगी रूस की ओर से हवाई हमले जारी हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक करीब 7,000 आम लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये शहर एक अहम हाईवे के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यहाँ इस हफ्ते 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। श्रीलंका के एक कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो ईस्टर के दिन धमाके करने वाले आत्मघाती हमलावर के अवशेष कब्र से निकालें और उन्हें किसी दूसरी जगह दफनाएं। अभी ये बट्टी कलोग में हिंदुओं के एक शमशान घाट में दफन है। इस हमलावर ने अप्रैल में इसी शहर में एक चर्च में करीब 30 लोगों को निशाना बनाया था। पास में ही हमलावर का गृह नगर भी है, जहाँ के मुसलमानों ने उन्हें कब्रगाह में जगह देने से मना कर दिया था। कांगो गणराज्य में इबोला की वजह से मरने वालों की तादाद 2000 पार हो गई है। बीबीसी समाचार।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण, अपहरण और धमकाने का आरोप लगाने वाली लापता हुई छात्रा को पुलिस ने राजस्थान से खोज निकाला है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने मीडिया को बताया कि लापता हुई कानून की छात्रा के साथ उनके एक साथी को भी पकड़ा गया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास?
जैसा आपने बताया कि लड़की को वहां से रिकवर किया गया है राजस्थान के दौसा जिले में किसी स्थान से, और पुलिस ने इसकी जानकारी दी। चूंकि ये मामला जब से 24 तारीख को वीडियो वायरल हुआ था लड़की का कि उसको खतरा है, उसकी जान को, उसको धमकी दी जा रही है, तब से पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही था, जैसा पुलिस वालों ने भी कहा अधिकारियों ने, कि लड़की को रिकवर किया जाए। उन्होंने सबसे पहले इसमें इस कोशिश की और आज उसको रिकवर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि ये मामला चला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो अधिकारियों ने भी इस लड़की को रिकवर करने के बाद यही कहा कि फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो हमने कर लिया है। और जो बरेली रेंज के डीआईजी हैं राजेश पांडे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में भी ये बात कही।
लड़की के पिता ने एफआईआर कराई थी और इसी संबंध में वो, चूंकि लड़की किसी से संपर्क नहीं कर रही थी और उनके पिता को आशंका थी कि पता नहीं लड़की का क्या हुआ है, तो पुलिस ने मेहनत करके आज उसको सकुशल उसको रिकवर किया है। साथ में एक लड़का और उसको भी रिकवर किया है। कंसर्न कोर्ट में इसको प्रस्तुत करें। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि सब जुडिस है, महिला का बयान होना है। एक तरह से 364 के मुकदमे में वो पीड़िता है, तो वो जो बयान कोर्ट के सामने करेगी उसी बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और जैसा कि संदीप ये आपने सुना और ये आपको पता होगा कि इस मामले में एक और एफआईआर है जो कि स्वामी सचिदा स्वामी चिन्मयानंद जिनके ऊपर ये आरोप है, उनके सेक्रेटरी ने, उनके जो पीए हैं उन्होंने, वकील हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि 22 तारीख को उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी या रिश्वत मांगी गई थी, जो भी उसको कही है, उस पर की धमकी दी गई थी कि अगर आप नहीं देंगे तो कोई आपके खिलाफ कोई चीज सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है और उसका ये कहना है कि इन दोनों का क्या तारतम्य है वो भी पता किया जा रहा है। बहुत कुछ अधिकारियों ने नहीं बताया चूंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। और ये जैसा कि आपको मालूम होगा, श्रोताओं को ये पता होगा कि स्वामी चिन्मयानंद गृह राज्य मंत्री रहे हैं देश के जब एनडीए सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और 8 साल पहले इस तरह का उनके ऊपर एक और भी मामला आया था जिसमें किसी महिला ने शोषण का आरोप लगाया था। तो अब ये जब से दोबारा से मामला आया है तो एक बार फिर से वो संदेह में घेरे में आ गए हैं। हालांकि अभी तक स्वामी चिन्मयानंद ने खुद इस पर कोई बयान नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कल उनसे जब हरिद्वार में वो थे, वहां लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, तो उनका ये कहना था कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा जब शाहजहांपुर पहुंच जाऊंगा तब बोलूंगा। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण और है कि ये जिस कॉलेज की ये छात्रा थी लड़की, वो कॉलेज उसके जो मुख्य प्रबंधक है, प्रबंध समिति के जो सर्वे सर्वा है, वो स्वामी चिन्मयानंद ही है। संदीप,
बहुत शुक्रिया। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र के बाद लौटते हैं दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा से वो पहले चैम्बर में बात करेंगे और उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाए। अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में आज दिन ढलने के बाद भी काफ़ी गहमा गहमी रही। दिव्या स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी दिव्या आर्य, आप नज़र बनाकर रखी थी इस घटनाक्रम पर, बताइए क्या कुछ हुआ है अभी?
बहुत ही नाटकीय ढंग से पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें बदली हैं संदीप। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस एक याचिका की सुनवाई की जो कुछ वकीलों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, ये जानने की मंशा से कि वो बच्ची कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, क्योंकि वो कई दिन से गुमशुदा थी। उसकी सुनवाई के दौरान जस्टिस भानुमति ने कहा कि तुरंत उन्हें बताया जाए, उन्होंने राज्य सरकार से पूछा, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि वो कहाँ है लड़की, और जब उन्होंने पूछा लगभग उसी वक्त उसे ढूंढ लिया गया। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हें लड़की को यहाँ पेश किया जाए, दिल्ली लाया जाए। और अभी अभी कुछ देर पहले लड़की से मिलकर उसके बाद कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि लड़की को उनके माँ बाप से बात करने की अनुमति दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के लैंडलाइन फ़ोन से बात कराई जाए, और जब तक लड़की की अपने माँ बाप से बातचीत नहीं हो जाती तब तक ये तय ना किया जाए कि वो कहाँ उसको ठहराया जाएगा, उस लड़की को दिल्ली में रखा जाएगा, शाहजहांपुर वापस ले जाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो लड़की ने ऐसा कोर्ट को कहा है कि वो वापस उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहती है और अपने माँ बाप के साथ मिलकर ही तय करना चाहती है कि वो आगे क्या कदम उठाए। अब अगली सुनवाई इस मामले की सोमवार यानी 2 सितंबर को होगी।
यानी सोमवार को तय होगा कि अब इस मामले में आगे आरोपों की किस तरह से सुनवाई होती है और आगे की क्या कार्रवाई तय होती है। बहुत शुक्रिया दिव्या आर्य। अब बारी है विवेचना की। नीली आंखें, छोटे बाल, मनमोहक मुस्कान, ये पहचान उस शख्सियत की है जिसकी जिंदगी मात्र 36 साल की ही रही। 22 साल पहले जब पेरिस में एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हुई तो न सिर्फ पूरी दुनिया सन्न रह गई बल्कि उसे अपार दुख भी हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कभी ब्रिटेन की राजकुमारी रहीं डायना स्पेंसर की। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं लेडी डायना के अंतिम क्षणों को।
राजकुमारी डायना ने अपना आखिरी दिन अपने पार्टनर डोडी अल्फायद की नौका के ऊपरी डेक में बिताया। नाश्ते में उन्होंने ताज़े जैम के साथ एक एक क्रोइसां खाया। साथ में डायना ने दूध वाली कॉफ़ी ली, जबकि डोडी ने काली कॉफ़ी का मग लिया। उस दिन 11:30 बजे दोनों ने नौका छोड़ दी ताकि वो डोडी के निजी विमान से पेरिस पहुंच सके। जैसे ही डोडी का विमान नीचे उतरा, कैमरा वालों ने उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। शाम को वो दोनों रिट्स होटल पहुंचे। डायना अपने बाल संवरवाने होटल के सैलून में चली गईं और डोडी अपने ज्वेलर से मिलने चले गए। मशहूर पत्रकार क्रिस्टोफर एंडरसन अपनी किताब द डे डायना डाइड में लिखते हैं,
पहले वे दोनों पेरिस के रेस्तरां शे बिनॉय में गए। जब वहां उन्होंने फोटोग्राफरों की भीड़ देखी तो वो लौटकर रिट्स के डाइनिंग रूम में आ गए। वहां डायना ने वेजिटेबल टेम्पोरा का ऑर्डर दिया, जबकि डोडी ने ग्रिल टर्बोट मछली मंगवाई। ऑर्डर देने के तुरंत बाद वो असहज महसूस करने लगे क्योंकि कई आंखें उन्हें घूर रही थीं। उन्होंने तुरंत डाइनिंग रूम छोड़ा और बेरर से कहा कि वो उनका खाना उनके इम्पीरियल सूट में पहुँचा दे। डोडी ने योजना बनाई कि उनके ड्राइवर और अंगरक्षक ये आभास देंगे कि वे आगे के गेट से बाहर निकलने वाले हैं, जहां उनकी मर्सिडीज गाड़ियों का काफिला उनका इंतजार कर रहा है। तभी डोडी होटल के पिछले दरवाजे से होटल की दूसरी मर्सिडीज S280 में निकल जाएंगे।
डोडी की ये योजना सफल रही, लेकिन उस दिन उनके ड्राइवर ऑनरी पॉल ने शराब पी रखी थी। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा फ्रांस की कानूनी मान्य सीमा से 3 गुना अधिक थी। जैसे ही वो वहां से निकले, फोटोग्राफरों को इसकी हवा लग गई और वो उनके पीछे मोटरसाइकिलों पर दौड़ पड़े। उनका ड्राइवर उनको छकाते हुए ईफिल टावर के पास पोंदे अल्मा सुरंग के अंदर घुस गया। ठीक 12:23 पर फोटोग्राफरों से बच निकलने की कोशिश कर रही कार सुरंग के कंक्रीट खंभे से जा टकराई। बाद में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया,
We were walking along the Seine River and we heard a huge explosion. It sounded like...
हम सेन नदी के किनारे चल रहे थे, तभी हमने एक जोर का धमाका सुना। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत नजदीक से बंदूक से कोई फायर किया और एक कार के टायरों के स्क्रीच की आवाज सुनाई दी।
एक और चश्मदीद ने कहा,
I was the first one down in the tunnel and my girlfriend and 3 other tourists.
मैं अपनी गर्लफ्रेंड और 3 अन्य पर्यटकों के साथ सुरंग के दरवाजे पर था। ट्रैफिक थोड़ा धीमा हो चला था क्योंकि वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही धमाका हुआ, मैं और एक जर्मन पर्यटक अंदर की तरफ दौड़े ताकि हम कार में सवार लोगों की मदद कर सकें।
1:20 पर एम्बुलेंस वहां पहुंची। एम्बुलेंस पर सवार ऑर्नल डोरोसी ने बीबीसी से बात की।
It was really a wreckage we found with the driver obviously already passed away.
वहां पर हमें कार नहीं कार का मलबा मिला। ड्राइवर और डोडी की जान जा चुकी थी। कार से 10-20 गज की दूरी पर एक शख्स पड़ा हुआ था और एक मेडिकल टीम उन्हें हर संभव तरीके से मदद कर रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो राजकुमारी जिंदा थी। वो कार की पिछली सीट पर थी और उनका आधा शरीर कार के फर्श और आधा शरीर कार की सीट पर था। वो करीब करीब बेहोश थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी।
बीबीसी ने उनसे पूछा, क्या आप याद कर सकते हैं डायना क्या कहने की कोशिश कर रही थी?
It was difficult to really understand, but I think I understood that it was very painful and
ये समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। वो टूटे हुए शब्दों में कह रही थी कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है।
अमरीकी पैरामेडिक्स स्कूप एंड रन यानी उठाओ और भागो तकनीक में यकीन रखते हैं, जबकि फ्रेंच स्टे एंड प्ले तकनीक में विश्वास रखते हैं। क्रिस्टोफर एंडरसन अपनी किताब द डे डायना डाइड में लिखते हैं,
अभी लेडी डायना रास्ते में ही थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और एम्बुलेंस को रोककर उन्हें AED और CPR दिया गया। 1:45 पर फ्रांस में ब्रिटेन के राजदूत माइकल रे को इस दुर्घटना की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत महारानी के निजी सचिव रॉबिन जैनवरन को फोन करके इसके बारे में आगाह कर दिया। ठीक 2:01 पर डायना की एम्बुलेंस अस्पताल में घुसी।
बाद में उस एम्बुलेंस में सवार कई लोगों ने इंटरव्यू दिए। लेडी डायना को सीपीआर देने वाले पैरामेडिक जेवियर गुरमिलान ने बताया,
डायना के पूरे शरीर पर मुझे खून की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी। जब मैं उन्हें सीपीआर दे रहा था तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। जब मैंने उनके दिल की मालिश की तो मुझे लगा कि वो ठीक हो रही हैं। जब उनको एम्बुलेंस में लिटाया गया तो उनको सांस आ रही थी। आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये लगा था कि वो बच जाएंगी।
उनको देखने वाले एक और डॉक्टर डैनियल इरोड ने कहा,
पहली बार डायना के दिल की धड़कनें तब रुकी जब उन्हें कार से उतारकर एम्बुलेंस पर चढ़ाया गया, लेकिन कार्डियक मसाज दिए जाने के बाद उनका दिल फिर से धड़कने लगा। एम्बुलेंस में उनकी हालत फिर खराब हुई और डॉक्टरों ने उन पर काम करने के लिए एम्बुलेंस रुकवा दी। जब वो अस्पताल पहुंची तो उनकी हार्ट बीट चल रही थी, लेकिन जल्द ही उन्हें सांस लेने में मदद करने के लिए एक कृत्रिम उपकरण लगा दिया गया।
उसी समय लंदन में ओल्ड बैरक्स में डायना के अंगरक्षक पॉल बरल के घर पर टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर डायना की नजदीकी दोस्त लूसिया फ्लेचा डे लीमा थी, जो उन्हें वॉशिंगटन अमरीका से फोन कर रही थी। उन्हें क्लिंटन के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से पता चला था कि डायना की कार का एक्सीडेंट हुआ है। डायना की निजी सचिव जैकी एलन ने पॉल और डायना के ड्राइवर के लिए पेरिस जाने के लिए जहाज के टिकट बुक किए। उस समय ब्रिटिश एयरवेज के लंदन के सारे दफ्तर बंद थे, इसलिए ये टिकट एयरलाइंस के न्यूयॉर्क ऑफिस से बुक किए गए। सुबह 4 बजे राजकुमारी डायना को मृत घोषित कर दिया गया।
This is BBC Radio News from London. Buckingham Palace has announced the death of Diana, Princess of Wales. The princess, who was 36, died late last night in a car crash in central Paris.
बरेल ने अपने घर जाकर बैग में अपना सामान लिया और फिर वो डायना के अपार्टमेंट में चले गए। पॉल बरेल अपनी किताब अ रॉयल ड्यूटी में लिखते हैं,
मैं राजकुमारी के अपार्टमेंट 8-9 के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा। इसके अंदर पसरे सन्नाटे ने मुझे बुरी तरह से विचलित कर दिया। मैं उनकी मेज के पास गया, उस पर रखी 3 मिनिएचर घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। एक बीकर में करीब दर्जन भर पेंसिल रखी हुई थीं। एक मेमो शीट पर पत्रों में इस्तेमाल करने के लिए अच्छे शब्दों की सूची लिखी हुई थी। उन्होंने इस बात को कभी नहीं छिपाया कि उनकी अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग बहुत कमजोर थी। फिर मुझे वो तस्बीह दिखाई दी जो उन्हें मदर टेरेसा ने दी थी। वो एक छोटी सी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के चारों ओर लिपटी हुई थी। मैंने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर उनके पसंदीदा परफ्यूम फाउवर्क 24 की आधी इस्तेमाल की हुई बोतल रखी हुई थी। बगल में उनका पैंटीन हेयर स्प्रे, कॉटन बट से भरा हुआ गिलास और कई लिपस्टिक्स रखी हुई थी। मैंने एक लिपस्टिक और एक पाउडर कॉम्पैक्ट उठाकर एक बैग में रख लिया।
पेरिस में पॉल बरेल सीधे फ्रांस में ब्रिटिश राजदूत के निवास पर गए। बरेल लिखते हैं,
मैंने राजदूत की पत्नी सिल्विया जे को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे चिंता है कि दुर्घटना के बाद राजकुमारी के कपड़े बहुत खराब हालत में होंगे। उन्हें ये कतई पसंद नहीं आएगा कि लोग उन्हें इस हालत में देखें। सिल्विया जे मुझे अपने वार्डरोब के सामने ले गई और बोली, आपको इसमें से जो भी ड्रेस ठीक लगे उसे चुन लीजिए। मैंने एक काले रंग की पोशाक चुनी। फिर मैंने उनका वर्साचे का साइज 9 का काले रंग का हील वाला जूता भी चुना। फिर हम दोनों अस्पताल के लिए रवाना हो गए। जैसी ही हम उनके प्रवेश द्वार पर पहुंचे, सिल्विया ने मेरा हाथ दबाकर कहा, बी ब्रेव।
जब पॉल बरेल को उस कमरे में ले जाया गया जहां डायना का पार्थिव शरीर रखा गया था, तो एक तरफ से नर्स हम्बर्ट ने उनका हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से ड्राइवर कोलिन ने उनकी बांह पकड़ी।
मैंने उनको देखा, वो महिला जिसका मैंने कई सालों तक ख्याल रखा था एक पलंग पर शांत लेटी हुई थी। गर्दन तक उनका चेहरा एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। मेरे जारों कतार आंसू निकलने लगे। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरे में सिर्फ 2 दर्जन गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वेलेरी गिस्का देहस्ता ने भिजवाया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपनी सारी ताकत जमा कर वहां खड़ी नर्स बीट्रेस हम्बर्ट से कहा, मैं राजकुमारी को पहनाने के लिए एक काली पोशाक और जूते लाया हूँ। मेरे पास उनकी एक लिपस्टिक और पाउडर भी है। फिर मैंने अपनी जेब से मदर टेरेसा की दी हुई तस्बीह निकालकर उनसे कहा, क्या आप इसे राजकुमारी के हाथों में रख देंगी? थोड़ी देर बाद जब मैं दोबारा राजकुमारी डायना के पार्थिव शरीर के सामने गया तो मैंने उनको बिल्कुल बदले रूप में पाया। उन्हें अब काली ड्रेस और जूते पहना दिए गए थे। उनके बाल ब्लो ड्राई कर दिए गए थे और उनके हाथ में मदर टेरेसा की दी हुई तस्बीह रखी हुई थी।
उधर प्रिंस चार्ल्स ने महारानी के बीई 146 रॉयल जेट में डायना की दो बहनों लेडी सारा और लेडी जेन फिलोज और अपने उप निजी सचिव मार्क बोलेंड के साथ पेरिस के लिए उड़ान भरी। पेरिस में लैंड करते ही उन्हें सिल्वर रंग की जैगुआर कार में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर फ्रांस के राष्ट्रपति जाक शिराक ने उनका स्वागत किया। वो उनको अस्पताल की दूसरी मंजिल के उस कमरे में ले गए जहां राजकुमारी डायना का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। क्रिस्टोफर एंडरसन अपनी किताब द डे डायना डाइड में लिखते हैं,
तब तक डायना के पार्थिव शरीर को स्लेटी रंग के ताबूत में लिटा दिया गया था। उस ताबूत में शीशे की एक खिड़की सी थी ताकि फ्रेंच कस्टम अधिकारी उससे डायना के चेहरे को देखकर पहचान सकें। उस ताबूत में फॉर्मल डिहाइलाइड और गुलाब और लिली के फूलों की मिश्रित सुगंध आ रही थी। जैसे ही एयर कंडीशनर की हवा से डायना के बाल उड़े, चार्ल्स बहुत भावुक हो गए। उनके होठों से एक आह सी निकली। वो अपनी पूर्व सालियों की तरफ मुड़े जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने उनको दिलासा दिया। फिर चार्ल्स ने बेहतरीन फ्रेंच में उन सब डॉक्टरों को धन्यवाद दिया जिन्होंने डायना का इलाज करने की कोशिश की थी।
जब विमान ने ब्रिटेन की धरती को छुआ तो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर वहां पर डायना के शव का इंतजार कर रहे थे। पॉल बरिल ने लिखा,
8 वायु सैनिकों ने करीब करीब स्लो मोशन में राजकुमारी डायना के पार्थिव शरीर को विमान से नीचे उतारा। फिर हमारी कारों का काफिला मध्य लंदन के लिए रवाना हुआ। सड़क के दोनों तरफ हर कार ड्राइवर ने अपनी कार रोक दी और अपनी कार के सामने डायना के सम्मान में सिर झुकाकर खड़े हो गए। मैंने सोचा अगर डायना जीवित होती तो इस बारे में क्या सोचती। वो शर्म से सिकुड़ते हुए कहती, ओ माय गॉड, वो मेरे लिए अपनी कार रोक रहे हैं, ओ नो।
6 सितंबर 1997 को ठीक 9:08 पर राजकुमारी डायना की शव यात्रा शुरू हुई।
वेल्स की राजकुमारी डायना की अंत्येष्टि सभा लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर एबे में संपन्न की गई है। राज परिवार के सदस्यों, राजनीतिक जगत, कला और रंगमंच के उनके मित्रों ने राजकुमारी के भाई अर्ल स्पेंसर के मर्मस्पर्शी और सशक्त संबोधन को सुना। उन्होंने अपनी बहन को निस्वार्थ मानवता का एक प्रतीक बताया।
उस शव यात्रा में हमारे पुराने साथी ललित मोहन जोशी भी मौजूद थे। उस शव यात्रा के तुरंत बाद उन्होंने बीबीसी हिंदी के आजकल कार्यक्रम में कहा था,
मुझे लगता है कि कम से कम 1,00,000 लोग उसके पूरे उस क्षेत्र में रहे होंगे, बकिंगम पैलेस और हाइड पार्क के पूरे क्षेत्र में। ये जो सारा दृश्य था, जो सारा परिदृश्य था, वो एक अंत्येष्टि का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शांत एक आंदोलन का, एक क्रांति का था। तो ये जो डायना की जो अंत्येष्टि हुई है, ये एक तरह से ऐतिहासिक एक इतिहास का सृजन हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भावनाएं लोगों की उभर करके आई हैं। और उसमें सारे, उसमें केवल ब्रिटेन के लोग नहीं थे, पूरे स्पेन से, आपके आयरलैंड से और भारत से, पाकिस्तान से इतने सारे लोग मुझे मिले। लोगों की प्रतिक्रिया यही थी कि डायना एक अद्भुत व्यक्तित्व था। उनका जो व्यक्तित्व है वो एक आदर्श व्यक्तित्व कुल मिलाकर बन गया है। और उन्होंने जो किया अपने जीवन में चैरिटीज़ के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए, और जो आम जनता से, जो एक सड़क के आदमी से, एक गरीब आदमी से जो उनका तादाद में था, उसको लोगों ने दिल के अंदर से महसूस किया। और जब ये कार्रवाई अभी में चल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़े बुजुर्ग, बड़े हट्टे कट्टे नौजवान, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे।
वेस्टमिंस्टर एबे में लेडी डायना को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद मैंने उस समय ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी से पूछा था कि आप राजकुमारी डायना को किस तरह से याद करना चाहेंगे।
सबसे ज्यादा तो उनकी मुस्कान, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनकी आत्मीयता, अपनापन, वो याद आता है। अभी 4 जून को हम उनके साथ, मैं और कमला जी दोनों भोजन करने गए, तो 2-2.5 घंटे हम उनके साथ रहे। एक एक क्षण, एक एक कदम पर लगता था कि जैसे हम उनके कितने अपने हैं। ये एक उनकी विशेषता थी, शायद ईश्वर की दी हुई एक विशेष प्रतिभा उनमें थी कि जो उनके पास होता था उनका मन जीत लेती थी। बातें बहुत हुई, भारतवर्ष की बातें बहुत हुई। जब अंदर मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर क्रिस्टल का गणेश उनके अपार्टमेंट में था। तो गणेश भगवान को जब देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है। हम लोगों भारतवर्ष के देवता हैं और हम ऊपर गए तो हमने उनको कहा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने गणेश की इतनी सुंदर क्रिस्टल की प्रतिमा रखी है। तो कहने लगी कि ये बताइए मुझे सारी इसकी प्राण, इसका तत्व, इसका अर्थ बताइए। मैंने जब ये कहा उसी बातचीत के दौरान कि गणेश जी शुभारंभ के प्रतीक देवता है, इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड ऑफ गुड ह्यूमर, तो मुस्कुराने लगी। उनका मुस्कुराने का सम्मोहन था और मुस्कुरा कर कहा तब तो मुझे इनकी जरूरत है। Where lives were torn apart, you called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in.
Rehan Fazal, BBC, Delhi.
और इसी के साथ सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं। सूर्यांशी, मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले एक नज़र bbchindi.com के पहले पन्ने पर। सबसे पहली खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी या सुस्ती का दौर। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक विकास की रफ्तार में सुस्ती ज़रूर आई है, लेकिन इसे मंदी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, पढ़ना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां और भी बहुत कुछ है। और सूर्यांशी, आज
और
क्रिकेट, सीधे क्रिकेट से ही शुरुआत करेंगे आप।
क्रिकेट के मैदान पर भी आज बहुत कुछ है, क्योंकि आज वेस्टइंडीज और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला है। पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने 318 रनों से जीत दर्ज की थी। यहाँ पर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल टॉस जब हुआ था तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और अभी वेस्टइंडीज में करीब 11 बज रहे होंगे सुबह के, और यहाँ पर 8:26 हो रहे हैं। और पहली इनिंग भारत की चल रही है, केएल राहुल मैदान पर हैं और मयंक अग्रवाल, ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। पांचवा ओवर है और 23 रन अभी तक बना चुकी हैं, किसी विकेट के नुकसान के, मतलब कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि केएल राहुल पर इस बार सबकी निगाहें ज़रूर होंगी, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पहली पारी में उन्होंने 44 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 38 रन। ऐसे में आज उनसे उम्मीद है कि वो एक अच्छी ओपनिंग दे पाएँ मयंक अग्रवाल के साथ, तो शायद भारत फिर से एक बार ज़्यादा मार्जिन से, इससे भी ज़्यादा मार्जिन से जीते। अगर हम आगे बढ़े तो BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान गुरुवार को कर दिया था, और टीम में एक बार फिर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह ऋषभ पंत ही विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सीरीज में आराम दिया गया है, वहीं हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले चहर भाइयों यानी कि दीपक चहर और राहुल चहर को फिर मौका दिया गया है, और नवदीप सैनी भी टीम में शामिल किए गए हैं।
और शूटिंग में भी आज कुछ खबरें हैं।
हाँ, वर्ल्ड कप चल रहा है, शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, और गुरुवार देर रात को भारत के अभिषेक वर्मा ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है, और सौरभ चौधरी ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। और दूसरी ओर संजीव राजपूत ने मेंस 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
सूर्यांशी पांडे से खेल समाचारों के बाद वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में आज दोपहर एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान के इस आह्वान का मकसद ये संदेश देना था कि पाकिस्तान भारत के कश्मीरियों के साथ खड़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ कई बैंकों के विलय की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही सार्वजनिक बैंकों की संख्या घटकर 12 हो जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की रिमांड 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। सीरिया से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिम इलाके के मारत अल नुमान शहर में
आम लोग भाग रहे हैं। यहाँ सीरिया की सरकार और उसके सहयोगी रूस की ओर से हवाई हमले जारी हैं। हांगकांग पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कोई भी शनिवार को होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेगा उसे 5 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। बीबीसी समाचार।
दिल्ली स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक कुछ ही देर में बजने वाले हैं रात के 8:30। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। आज दिन भर का संपादन किया दिव्या आर्य ने और तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समयानुसार 6:30 बजे। दीजिए इजाजत।